जय देवला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 17
ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम सुतात्मने नमः नमो नमो सीतारम नमो आयनियाम नमो वच्छायाम नमो लोहे सौवसाउनम वंजनलक्कणभूषियम नणंजनं तं जिनं नमन् संता वंजनसुतथमहम् समासदो वर्णयिष्यामि।
यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जय धोला टीका है जो कषाय पाहुल तथा सुनि सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता हैं गुंडर भट्टार तथा यति सब आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उद्देश्य के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 12वीं पुस्तक का ये जो व्यंजन नाम का अनुयोग बार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 191 पर आ गए। 191 आपको कोई प्रश्न था अरविंद? 174 पर। हाँ, नीचे से, हाँ नीचे से छठी लाइन, हाँ स्थिति बंध संबंधी विचार स्थान, विचार यानी पलट नहीं अथवा विचार, जैसे हम पृथक को वितर्क विचार कहते हैं, पलटना अलग अलग स्थानों की अपेक्षा से बात है, उसको पलवीच स्थान, वीच यानी वो तो पलटते हैं ना, वीच स्थान पलवीच स्थान कहते हैं, या सोपान स्थानों को, सोपान में भी ऐसे समझ एक के बाद एक पायरी, हाँ जिसको स्टेप कहेंगे, गुणस्थान कहते हैं वो सोपान रूप, तो ये अलग अलग स्थान। अब हम यहाँ आते हैं पृष्ठ संख्या 191 पर। यहाँ तो ये बात हमने देखी है व्यंजन अनुयोग द्वार में, तो क्रोध के लिए क्या क्या शब्द थे। 186 पर हमने देखा था क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, बुद्धि, झंझा, द्वेष, विवाद, ये उसके नाम देखे। मान के नाम क्या क्या देखे थे, मान, दर्प, मद, दर्प, स्तंभ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष, परिभव, उत्सिक्त, ये उसके बाद वहाँ बताए थे। माया के हमने देखे थे माया, सातियोग, निकृति, वंचना, अनृजुता, ग्रहण, मनोज्ञ मार्गण, कल्क, कुहक, गुहन और छन्न। उसके बाद लोभ के हमने देखे थे काम, राग, निदान, छंद, सुतयास्वत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, आशा, इच्छा, मूर्छा, वृद्धि, शाश्वता या शाश्वत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जीवा, ये उसके नाम देखे। तो उस पर अलग अलग शब्दों को देखते हुए हमने काम, ये मनोज्ञ निदान वगैरह उसकी बात हमने देखी थी। यहाँ हम आए अभी पृष्ठ संख्या 191 पर। यहाँ कहते हैं ये 5वीं लाइन, अब शासन, पत्थन, लालसा इत्यादि दूसरी गाथा का अर्थ कहते हैं। सांसद पत्थन लाल से सांसद है और यहाँ शासन लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखा है, शासन पत्थन लाल से, प्राकृत में भी शासन लिखा है। दोनों ही शब्द आते हैं ये सांसद, वहाँ तो मूल गाथा में सांसद कह दिया। ठीक पीछे जो गाथा है उसमें देख लेना,
सात सौ दो
लास्ट में परिशिष्ट में फिर दोबारा लिखते हैं ना ये सब, जिस 188 की बात यहाँ है। हाँ 340 पर 710 ठीक है, जैसे ऐसे रखेंगे ये सही है वो गलत है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राकृत में भी फिर दोबारा 710 मैंने समझाते हुए 709 उन्होंने भी लिखा है ऊपर, तो 710 पत्थन लाल सा इत्यादि दूसरी गाथा का अर्थ कहते हैं, आशा के साथ सो आशा जो रहता है वो शास कहलाता है, सो आशा शास के साथ सह आशया वर्तते की शास्त्र, उसके भाव का नाम शास्त्रता है। इसलिए शास्त्र द लिखा उन्होंने है ना, तो शास्त्र द के साथ द लगता है उस, केवल वहाँ हम अंडरलाइन करके द है कि ऐसा प्रश्न चिन्ह है कि नहीं, स्पृहा सहितपना और तृष्णा सहितपना इसका तात्पर्य है, इसका ना अर्थ क्या है, स्पृहा है या तृष्णा है आशा हम कहते हैं, यह लोभ का दूसरा पर्याय नाम है, अथवा जो शाश्वत हो वो शाश्वत कहलाता है, यह भी लोभ का एक नाम है। शंका, इसका शाश्वतिकपना कैसे बन सकता है, उसका समाधान, परिग्रह के ग्रहण करने के पहले और बाद में सदा बहने बना रहने के कारण लोभ शाश्वत कहलाता है, यानी वो नहीं है तब भी उसके प्रति वो परिणाम बने रहते हैं और वस्तु अपने पास आने के पश्चात भी वो बना रहता है। प्रकृष्ट रूप से अर्थन अर्थात चाहना प्रार्थना है, प्रकृष्ट रूप से धन की चाह करना ये इसका अर्थ है, हम तो भगवान की प्रार्थना करते हैं। लालसा और वृद्धि ये एकार्थवाची शब्द है, विरति शब्द की व्युत्पत्ति है विरमणम विरति, जिसमें विरति नहीं है उसका नाम अविरति है, रति यानी रमण करना उसकी, तो उससे वो छूटता नहीं है, अथवा अविरति शब्द की व्युत्पत्ति अविरमणम अविरति है, अविरति और असंयम इनमें अर्थभेद नहीं है, उसका हेतु होने से अविरति लोभ परिणाम स्वरूप है, क्योंकि हिंसा संबंधी अविरमण अर्थात अविरत के सभी भेद लोभ कषाय निमित्तक होते हैं। तृष्णा शब्द की व्युत्पत्ति है तर्षणम तृष्णा, विषय संबंधी पिपासा का नाम तृष्णा है, यह इसका तात्पर्य है। विद्या और जीवा ये दोनों भी लोभ के ही दो पर्याय नाम जानने चाहिए, यथा विद्या की व्युत्पत्ति है वेदनम विद्या, यहाँ पर विद्या पद से लोभ लिया गया है यह इसका अर्थ है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति वेदन के अधीन है, इसलिए लोभ भी विद्या रूप से उच्चरित किया गया है। विद्या ने हम जो सीखते उसकी उस विद्या की बात नहीं है, वेदन विद्या उसकी बात नहीं है, एक शब्द के अनेक अलग अलग अर्थ आते हैं। यानी उसकी उत्पत्ति वेदन के अधीन है, वेदन के अधीन है, हमें उसमें सुखता वेदन हो रहा है ना तो लोभ होता है, लोभ लाभ से बढ़ता है ऐसा वचन भी है। हम ये देखते भी जितना लाभ हो उतना और भी लोभ बढ़ता है, उसमें संतुष्टि नहीं। अथवा विद्या के समान होने से लोभ का नाम विद्या है। शंका, प्रकृति में उपमा रूप अर्थ क्या है? मैंने विद्या की उपमा क्यों दी, उसका अर्थ क्या है? समाधान, दुराराधपना प्रकृति में उपमार्थ है। अर्थात जिस प्रकार विद्या की आराधना कष्ट साध्य होती है, दुराराध, हाँ यानी कष्टम, कष्टम है, उसी प्रकार लोभ का आलंबन भूत भोगों को भोग कष्ट साध्य होने से प्रकृति में लोभ को कष्ट साध्य कहा है। यानी विद्या के उपमा क्यों की है, तो विद्या जैसे कष्ट साध्य है वैसे लोभ यानी उसके जो भोगों को भोग है वो कष्ट साध्य है। इसी प्रकार लोभ जीवा के समान होने से जीवा स्वरूप है, यह असंतोष रूप साधर्म का आश्रय कर जीवा लोभ का पर्यायवाची नाम ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जीवा यानी वो समाधान नहीं है ना, अभी खाया नहीं जाता इसलिए बच सकता, नहीं तो मुंह में तो रखने की तो इच्छा है ही है इसको वेदने की, स्वाद लेने की। इस प्रकार लोभ के इन एकार्थवाची शब्दों का व्याख्यान किया, ऊपर दो श्लोक है इसको पढ़ेंगे। कामो राग निदाने छंद सुदा प्रेय दोष नामान स्नेहानुराग आशा पूर्तेच्छा वृद्धि संन्यास्त शास्त्रता प्रार्थना तृष्णा लालसा विरति तथा विद्या जिह्वा च लोभस्य पर्याया विंशतिस्मृताः। काम राग निदान छंद सुत प्रेय दोष स्नेह अनुराग आशा मूर्छा इच्छा वृद्धि शाश्वत शाश्वत प्रार्थना तृष्णा लालसा अविरति विद्या और जीवा, ये 20 लोभ के पर्यायवाची नाम स्मृत किए गए हैं, नहीं याद किए। इस प्रकार व्यंजन नाम का अनुद्वार समाप्त हुआ। इसके ऊपर ये 4 और 5 नंबर नहीं लिखे हैं, लिख सकते हैं।
कहते विद्या की आराधना में क्या लेना है,
यानी पढ़ाई करना, यानी उनको आराधना से मतलब क्या होगा, कष्ट होने की बात नहीं, विद्या की आराधना करना है, कोई भी अभ्यास करना है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन ली, फिर वो अपने सब पढ़ाई की, कॉलेज की एडमिशन, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली मेडिकल में, तो उस बहुत कष्ट से उसकी आराधना की जाती है ना, अभ्यास किया जाता है, उसको समझा जाता है।
तो बहुत कष्ट
आज कल के स्कूल की एडमिशन ही कष्ट साध्य हो गई क्या?
सही कह, मैं ऐसा समझता था कि विद्या तो सहज हो जाती है ना, विद्या क्या आराम है।
अभी ये जो सहज होता है ज्ञान, ज्ञान की पर्याय से होती है, ये तो उसका मूल सिद्धांत है द्रव्यान योग का, परंतु यहाँ जो लौकिक में ले लिया है, ये जो शब्द कैसे बनते हैं उसकी चर्चा चली, ये शब्द कैसे तैयार हुआ,
ऐसा भी सहज ही आता है
तो लोग भी सहज ही होता है ना,
लोग के कारण होता
है, लोग भी सहज ही होता है लोग। हाँ हाँ, अब आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी सम्यक्स्व अधिकार है, देखो ये नया अधिकार यहाँ से शुरू हो जाता है अनुयोग द्वारा, नमो अरिहंतानम कह के ये शुरू होता है, हर अनुयोग द्वार में ऐसे लिखा शुरू, हम डायरेक्ट उसके अभी गाथा पढ़ेंगे। ಪಣಮಗಿನವರವಸಹಂ ಗಣಹರವಸಹಂ ತಹೇವ ಗುಣಹರವಸಹಂ ದುಸಹ ಪರಿಸಹ ವಿಸಹಂ ಜೈವಸಹಂ ಧಮ್ಮಸುತ್ತ ಪಾಡರವಸಹಂ ಪಣಮಿಯಜಿನನಾಹೆ ಗಣನಾಹೇತಹಯಚೇವ ಮುನಿನಾಹೆ ಸಮ್ಮತ್ತ ಸುದ್ಧಿ ಹೇವುಂ ಓತ್ಸಂ ಸಮ್ಮತ್ತ ಮಹಿಯಾರಂ. इसका अर्थ देखते हैं, पणमय ने प्रणाम प्रणाम करके, जब प्रणाम करो ऐसा कुछ है पणमह, किस किस को, जिनवर वसहम, जिनवर वृषभ, उसके बाद गणहर वसहम, गणधर वृषभ, वृषभ यानी मुख्य प्रधान, गुणधर वसहम, गुणधर वृषभ, गुणधर आचार्य ने लिखा नहीं कसाय पाओ, और दुसह परिसह विसहम जैवसहम, दुसह परिसहों को जीतने वाले, दुसह यानी सहन करने में अतिशय कष्टदायक ऐसे जो परिसह है उनको भी जिन्होंने जीत लिया है, यानी उनके वहाँ कष्ट का अभिप्राय उसमें नहीं है, ना ही कष्ट में उनके वहाँ अनुभूति चल रही है, उसको जीतने वाले तथा धम्मसुप्त पाढ़रवसहम तथा धर्मसूत्र के पाठकों में श्रेष्ठ पाठरवसहम, पाढ़रवसहम, पाठरवसहम दो शब्द उसमें उन्होंने नीचे दूसरा पाठ भेद भी दिया है, यही वसहम यानी यति ऋषभ, ऐसे यति ऋषभ को तुम सब प्रणाम करो प्रणमः. यह पणिनीय जिननाथ इस प्रकार प्रणाम करके, इस प्रकार जिननाथ गणनाथ तथा मुनिनाथ को प्रणाम कर सम्मत्त शुद्धि हेयु, सम्यक्व शुद्धि के निमित्त रूप सम्यक्व अधिकार का मैं कथन करता हूँ. सम्यक दृष्टि तो है ही, तो कहते उसकी की और विशुद्धि रूप वो करना नहीं, उसके अभ्यास से कितनी निर्मलता आती है, यही बात यहाँ स्वयं आचार्य बता रहे, वीरसेन आचार्य कह रहे. हम सूत्र पढ़ेंगे अभी, कसाय पाहुड़े सम्मत्तेति अनियोगद्दारे अधापवत्त करणे इमाओ चत्तारी सुप्त गाहाओ परु वेयो वाओ. कषाय प्रावृत के सम्यक्त्व नामक अनुयोग द्वार के अंतर्गत अधः प्रवृत्तकरण संबंधी इन चार सूत्र गाथाओं का कथन करना चाहिए. इस सम्यक्त्व संज्ञक महाधिकार के उपक्रम आदि भेद रूप चार प्रकार के अवतार का कथन करने के लिए यह सूत्र आया है. यथा प्रकृत में अवतार चार प्रकार का है, तो पहले बात अपनी हो चुकी है धौला में, उसको कहते उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम. धौला में ही का जय धौला में ही, धौला में ही,
धौला में
उनमें से उपक्रम पांच प्रकार का है, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार. उनमें से पूर्वानुपूर्वी आदि के भेद से आनुपूर्वी तीन प्रकार की है. ये याद है ना पूर्वानुपूर्वी, शुरू से क्रम से बताना वो पूर्वानुपूर्वी, अंत से उल्टे क्रम से बताना है पश्चातानुपूर्वी, और कहीं से भी कहें नहीं तो यथा तथा या यत्र तत्रानुपूर्वी. प्रकृत में यहाँ पर क्या है, पूर्वानुपूर्वी की अपेक्षा यह दसवां अर्थाधिकार है, पश्चातानुपूर्वी की अपेक्षा यह छठा अर्थाधिकार है, और यत्र तत्रानुपूर्वी की अपेक्षा अनिर्धारित संख्या वाला यह अर्थाधिकार है, ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए. कहीं से भी किसी का भी नाम लेके अगर कहेंगे तो उसको पहला भी कह सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, ऐसे कहीं पर भी उसका नंबर हो सकता है. नाम और प्रमाण ये दोनों सुगम हैं, वक्तव्यता, स्व समय वक्तव्यता और तदुभय वक्तव्यता जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व की प्ररूपणा उसकी प्रतिपक्ष प्ररूपणा के अविनाभाव स्वरूप है। सम्यक्त्व का कथन करने करते समय उसका प्रतिपक्ष का भी यहाँ कथन होगा। अब अर्थाधिकार, पांच बताए थे ना उपक्रम, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार। अर्थाधिकार दो प्रकार का है, दर्शन मोहक सामना और दर्शन मोहक सपना। सम्यक को संबंधी दर्शन मोहक यानी उपशम समय, तो दर्शन मोहक सामना और दर्शन मोहक सपना, क्योंकि ये दोनों अर्थाधिकार सम्यक्त्व अधिकार के योनि स्वरूप है, यानी उसके अवयव स्वरूप है, नहीं योनि स्वरूप है, उसके ओरिजिन
उत्पत्ति,
ओरिजिन उसकी उत्पत्ति। निक्षेप नय और उपक्रम का विशेष कथन जानकर करना चाहिए। निक्षेप तो हमने लोग क्षेत्र काल भाव जो निक्षेप लगाते हैं तो सम्यक्त्व पर लगा लो, सम्यक्त्व का नाम बच्चे का नाम सम्यक्त्व रख सकते ही नहीं, सम्यक्त्व रख रहे ना बहुत, तो नाम है स्थापना, किसी चीज में उसकी स्थापना करना, ये तो स्थापना सम्यक्त्व होगा। द्रव्य सम्यक्त्व में आगम द्रव्य सम्यक्त्व किसको कहेंगे, सम्यक्त्व
आगम को जानने का,
इनको बता देना। सम्यक्त्व आगम, सम्यक्त्व संबंधी आगम को जानता है और उसका उपयोग अन्य आगम की बात है ना, और नो आगम है ना अभी नहीं जानने वाली बात, तो नहीं जानने वाले क्या क्या हो सकते हैं, तो जीव का शरीर या जीव भी जो भविष्य में जाएगा उस जीव को भी नो आगम कहा, और इन दो के उनसे भिन्न जो क्या है सत्कर्म भी नहीं जानता, अन्य जो नो कर्म की चीजें अन्य सभी चीजें वो भी नहीं जानता, तो इस तरह से हम उसमें ले सकते भाव में जो वर्तमान में सम्यक्त्व रूप से भाव में, तो परिणत उसको बाद में लेना, नो आगम में लेना। वर्तमान में आगम को जानने वाला सम्यक्त्व संबंधी आगम को जानने वाला वो भाव सम्यक्त्व कहेंगे, भाव आगम सम्यक्त्व या आगम भाव सम्यक्त्व, आगम भाव सम्यक्त्व। और नो आगम में उस रूप परिणत जीव लेना, समय स्वरूप परिणत है, आगम में तो उसके शास्त्र को जानने वाला जो भी है। यहाँ क्या कहते देखेंगे हम,
यहाँ पे तो कुछ बता ही नहीं।
अच्छा अच्छा, विशेष जानकर कथन करना चाहिए, इतनी बात बता दी। अब अनुगम को बतलाते हैं, चार बातें बताते हैं, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। तो अनुगम किसे कहते हैं, प्रकृत अधिकार का विस्तार पूर्वक कथन करने के लिए उसके अवलंबन स्वरूप गाथा सूत्रों के अनुसरण करने को अनुगम कहते हैं, यानी मूल गाथा सूत्रों के अनुसार ही ये कथन है, इसको अनुगम कहते हैं, टू फॉलो, उसके पीछे पीछे जाना, ऐसा अर्थ प्रकृत में विवक्षित है। जैसा कहा है अध: प्रवृत्तकरण के विषय में इन चार सूत्र गाथाओं का कथन करना चाहिए, इस तरह से क्या है, इन चार सूत्र गाथाओं को हम अनुगम कर रहे हैं, इसका अनुगम नहीं उसके अनुसार कथन हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है, सम्यक्त्व इस अधिकार के अर्थ का विशेष व्याख्यान करने पर दर्शन मोक्ष सपना का सर्वप्रथम कथन करना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व की उत्पत्ति रूप व्यवहार उसी में रूढ़ है। उसमें गुणधर आचार्य के मुख कमल से निकली हुई 15 सूत्र गाथाएं प्रतिबद्ध है, यानी अभी सम्यक्त्व संबंधी 15 सूत्र गाथाएं हैं। उसमें भी अधप्रवृत्तकरण आदि के भेद से ये तीन करण होते हैं, उनके लक्षणों का कथन आगे करें। उनमें सर्वप्रथम अधप्रवृत्तकरण के विषय में ये चार सूत्र गाथाएं हैं, जो 15 मूल गाथाओं से बहिर्भूत है। इन एडिशन है, वे दर्शन मोह का उपशम करने वाले उसी जीव के उसके अभिमुख होने रूप अवस्था का प्ररूपण करते हैं। यानी वो जो अभी दर्शन मोह को उपशम करने वाला है वह जीव जब उसके सन्मुख अवस्था वाला है उसका वर्णन करते हैं। उनका सर्वप्रथम यहाँ प्ररूपण करना चाहिए क्योंकि उनका प्ररूपण किए बिना 15 मूल गाथाओं के अर्थ का विशेष व्याख्या नहीं हो सकता। इस प्रकार यहाँ पर यद्यपि अधप्रवृत्तकरण के विषय में इन सूत्र गाथाओं का कथन करना चाहिए ऐसा सामान्य रूप से कहा है, तो भी अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय में इनका कथन करना चाहिए ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि ये चार सूत्र गाथाएँ अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय के विषय में कही गई है। ऐसा आगे कहे जाने वाले चुनी सूत्र संबंधी उपसंहार वाक्य से उक्त प्रकार के विशेष निर्णय की उपलब्धि होती है। यानी बाद में जो सूत्र आने वाला है उससे ये नक्की हो जाता है अधप्रवृत्तकरण के पहले समय संबंधी बात। अब वे कौन सी गाथाएँ हैं ऐसी आशंका होने पर पूर्वक उत्तर प्रबंध को कहते हैं। पहले पृच्छा बताएंगे फिर उसका समाधान। तम जहाँ वह जैसे गाथा सूत्रों के अवतार की अपेक्षा रखने वाला यह पृच्छा वाक्य सुगम है। इस प्रकार पृच्छा के विषय रूप से विवक्षित गाथा सूत्रों का क्रम से यह स्वरूप निर्देश है। अभी वो गाथा पढ़ेंगे। दंशन मोह वसामवस्त परिणामों के सोभवे जोगे कसाय जोगे लेसावे जोग को हवे। अलग चाले ठीक है, उसका अर्थ देखते हैं। दर्शन मोह का उपशम करने वाले जीव का परिणाम कैसा होता है, किस योग कषाय और उपयोग में विद्यमान उनके कौन से लेशा और वेद होता है, सभी बातें पूछी। यानी कौन से जीव को ये उत्तम समय को हो सकता है या उत्तम समय तो के का उत्तम करने वाले जीव के कौन से योग के द्वारा होता है, कौन से कषाय में होता है, कौन सा उपयोग है, दर्शन उपयोग है कि ज्ञान उपयोग है, लेशा कौन सी हो सकती है, कौन से वेद वाले को होता है, ये बात पूछेंगे। ये तो अभी प्रश्न है। दर्शन मोह के उपशम के सन्मुख हुई अवस्था में प्रवृत्त हुए, अभी सन्मुख अवस्था में वो प्रवृत्त हुआ जीव है, दर्शन मोह के उपशम जीव के परिणाम विशेष का कथन करने के लिए तथा उसी के एक तो उसके परिणाम कैसे है और उसके साथ साथ उसके योग कषाय उपयोग लेशा और वेद के भेदों का कथन करने के लिए यह गाथा आई। उनमें से सर्वप्रथम पूर्वार्ध के दर्शन मोह के उपशामक का परिणाम कैसे होता है, परिणाम कैसा होता है, इस वचन द्वारा क्या विशुद्ध होता है या विशुद्धतर होता है, संक्लिष्ट होता है या संक्लिष्टतर होता है, ये इससे मतलब कैसा होता है इन चार में से। इस प्रकार विशुद्ध संक्लेश की अपेक्षा पृच्छा का निर्देश किया हुआ जानना चाहिए। इस प्रकार उक्त पृच्छा विषय विशेष निर्णय की अपेक्षा रखने वाला यह पृच्छा का निर्देश किया है, नहीं ऊपर है तथा उत्तरार्ध के लिए नहीं पड़ा था, किस योग कषाय और उपयोग में विद्यमान उसके लेशा और वेद कौन सा होता है, इस वचन द्वारा क्या सामान्य से आवाज़ कम हुआ था,
हेलो
हाँ अभी देखो ठीक है। तथा उत्तरार्ध के किस योग कषाय और उपयोग में विद्यमान उसके लेशा और वेद कौन सा होता है, इस वचन द्वारा क्या सामान्य से सभी योग कषाय और उपयोग आदि के भेद इसमें संभव है या कोई विशेषता है, इस प्रकार उक्त पुच्छा विषय विशेष निर्णय की अपेक्षा रखने वाला यह पुच्छा का निर्देश किया है। यानी यहाँ पहले तो प्रश्न समझाया, उत्तर तो बाद में आएगा। इस प्रकार पूछे गए अर्थ का विशेष निर्णय आगे चूर्णी सूत्र के संबंध से करेंगे। अभी तो चार गाथाएं बताएंगे, सभी यहाँ गाथाएं बताने के बाद सूत्र बताएंगे, क्योंकि सूत्र सिद्ध अर्थ की पृथक प्ररूपणा में फल विशेष नहीं पाए जाते। इस प्रकार सर्वप्रथम प्रथम गाथा द्वारा, ये सर्वप्रथम वाला शब्द अलग है, सबसे पहले प्रथम गाथा द्वारा संक्षेप से उत्थानिका रूप अर्थ का कथन करके अब दूसरी गाथा का अवतार करते हैं।
ये निषेध से जुड़ी बात है जो अर्थ प्रवृत्त कारण है।
यहाँ तो ये बात है अभी दर्शन मुख के उपशम के सम्मुख हुआ जी, सम्मुख से सम्मुख कहेंगे मुझको, तो उसके कौन कौन से क्या क्या उन्होंने प्रश्न पूछे, परिणाम कैसे क्या है, क्या
कौन सा योग है। नहीं, प्रथम उत्तम की बात है,
प्रथम दर्शन मुह का उपशम दोनों ही हो सकते हैं, परंतु हम यहाँ तो दर्शन मोह का उपशम करने वाले जीव के पूर्वबद्ध कर्म कौन कौन है, वर्तमान में किन कर्मांशों को बांधता है, कितने कर्म उदयावली में प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मों का प्रवेशक होता है, यह दूसरी गाथा दर्शन मोह का उपशम करने वाले जीव के ज्ञानावरणादि कर्म संबंधी प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषय सत्कर्म यानी उसका सत्व बंध उदयावली प्रवेश और उदीर्णा का, उदयावली यानी केवल उदयावली में प्रवेश करना और उदीर्णा यानी वो उदय रूप होना, पृच्छा मुख से कथन करने के लिए आई है। यथा कानी वा पूर्वबद्धानी, यह गाथा सूत्र का प्रथम अवयव सभी कर्मों के प्रकृति सत्कर्म स्थिति सत्कर्म अनुभाग सत्कर्म और प्रदेश सत्कर्म के कथन करने में प्रतिबद्ध है। हम तो इतना ही कहते हैं ना, वो तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है अगर प्रवृत्त कर्म में प्रवेश किया तो कहते हैं वो तो केवल स्थिति की बात थी, तो वहाँ कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं, उनका अनुभाग किस रूप में है और उनके प्रदेश कितने हैं, वो सब बताएंगे यहाँ। शंका, पूर्वबद्ध कर्म कौन है, इस प्रकार सामान्य निर्देश द्वारा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विशेष की उपलब्धि कैसे होती है। समाधान, यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, सामान्य निर्देश में सभी विशेष का संग्रह होने विशेषों का संग्रह होने में कोई विरोध नहीं आता। सामान्य कथन में सभी विशेष गर्भित है ही है। केवा अंश निबंध दी गाथा सूत्र का दूसरा अवयव उन्हीं कर्मों के प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विशेष रूप नवक बंध के स्वरूप के निरूपण के लिए आया, यानी वो पूर्वबद्ध कौन कौन सी प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप से पाए जाते हैं एक बात, और यहाँ का जो नया बंधन है कौन से प्रकृतियों का होता है, कितनी स्थिति वाला होता है, कैसे अनुभाग वाला होता है, कितने प्रदेश वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर अंश शब्द कितने अंश में होता है ना, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विशेष का वाक्षी ग्रहण किया गया। कति आवलियम परिसंति, इस गाथा सूत्र का तीसरा अवयव मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद से अनेक प्रकार के सभी कर्मों के स्थितिक्षय जन्य उदयावली प्रवेश के अनुसंधान के लिए निबद्ध किया गया। उदय और अनुदय रूप से उदयावली में प्रवेश करने वाली, ये बात कर रहे हैं। उदयावली में प्रवेश करने वाली जरूरी नहीं कि वो उदय रूप हो। प्रकृतियों के अनुसंधान में गाथा सूत्र का यह अवयव प्रतिबद्ध है, यह इसका भावार्थ है। कभिन्नम व पवेचको गाथा सूत्र का यह चौथा अवयव सभी कर्मों की उदीर्णा द्वारा उदयावली में प्रवेश कराई जाने वाली प्रकृतियों की स्वरूपणा में प्रतिबद्ध है। यह सब पृच्छा सूत्र है। इस पृच्छा का निर्णय आगे शून्य सूत्र के संबंध से करेंगे। अब तीसरी गाथा का अवतार करते हैं। केयं से जीयदे पूवं बंधेन उदयेन वा अंतरं वा किंचिच्चा केके सामगोकरं दर्शन मोके दर्शन मोह के उपशम के सन्मुख होने पर पूर्व ही बंध और उदय रूप से कौन से कर्मों क्षीण होते हैं। पूर्व में पहले ही होने पर पूर्व धीरे पूर्व दर्शन मोह के उपशम के सन्मुख होने पर, हाँ, जो ऑलरेडी सन्मुख हुआ है उसके ऑलरेडी बंध और उदय रूप से कौन से कर्मों क्षीण होते हैं। आगे चलकर अंतर को कहाँ पर करता है और कहाँ पर अंतरम वा कहीं किच्छा, कहाँ पर किन किन कर्मों का उपशामक होता है। वही विषय चलेगा। यह तीसरी गाथा पूर्वार्ध द्वारा सभी कर्मों के प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विशिष्ट बंध और उदय रूप से क्षीण अक्षीण पने के अनुसंधान करने के लिए आई है। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विशिष्ट कौन से कर्मों दर्शन मोह के उपशम उपशन हुआ उपशम के सन्मुख होने की अवस्था में पहले ही क्षीण हो जाते हैं और कौन से कर्म क्षीण नहीं होते हैं। इस प्रकार सूत्र में पदों के संबंध का अवलंबन दिया है तथा
यहाँ पे क्षीण का अर्थ क्या है? क्षीण हो जाना,
नष्ट हो जाना, यानी अभी अनुभाग उसका मिट जाना या स्थिति उतनी नहीं रहना, अभाव होना। इसके उत्तर में सभी अभी आपके मिल जाएगी अपने इसके उत्तर तथा उत्तरार्ध द्वारा भी आगे होने वाला अंतर अंतर होगा ना बीच में अंतर कर्म किस स्थान पर होता है और किन कर्मों का किस स्थान पर यह उपशामक होता है। इस तरह इस प्रकार का अर्थ विशेष पृच्छा द्वारा प्ररूपणा में प्रतिबद्ध है। यहाँ तो केवल पृच्छाएँ की है जिसका अर्थ का उत्तर तक शून्य सूत्रकार स्वयं खोलें तथा इस प्रकार के पृच्छा निर्देशों का खुलासा ध्यान दिखाइए आगे चूर्ण सूत्र के संबंध से करेंगे। अब क्रम से अवसर प्राप्त चौथी गाथा का यह निर्देश है। किम खिदियानि कम्मानि अनुभागे सुकेशुवा ओवर्थिदूण शेषानि कम्थानं परिवर्जति। ये अनुभागे मू लिखा है, सु होना चाहिए ऐसा लगता है, मैंने सु पढ़ा अभी 198 पर देख लो 190 अनुभागेषु 341 पेज पर लिखा है अनुभागेषु। उसका अर्थ देखते हैं। दर्शन मोह का उपशम करने वाला जीव किस स्थिति वाले कर्मों का तथा किन अनुभागों में स्थित कर्मों का अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थान को प्राप्त होता है, यानी कितनी स्थिति वालों का अपवर्तन करके कितनी स्थिति वाला बन जाता है, ये बातें इस चौथी गाथा के पूर्वार्ध द्वारा दूसरी गाथा में कहे गए स्थिति सत्कर्मों और अनुभाग सत्कर्मों का पुच्छा द्वारा अनुवाद करके अनंतर उत्तरार्ध द्वारा स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक संबंधी प्ररूपणा के बीज पद का निर्देश किया। दर्शनों का उपशामक जीव किस स्थान पर स्थिति विशेष और अनुभाग विशेष से युक्त किन कर्मों का अपवर्तन कर अवशिष्ट किस स्थान को प्राप्त होता है, क्योंकि स्थिति के कितने भागों का विनाश कर कितने भाग को शेष बचाता है कांडगातकन, तथा अनुभाग के कितने भागों का अपवर्तन कर कितने भाग को शेष बचाता है, इस प्रकार सूत्र का अर्थ के साथ संबंध का अवलंबन लिया गया है। इस प्रकार इन गाथा सूत्रों के उत्थानिका रूप अर्थ का कथन कर अब इनके विस्तार पूर्वक अर्थ का कथन करने के लिए आगे के पूर्ण सूत्र के प्रबंध का अनुसरण करते हैं। अब यहाँ से एक गाथाएं बताई, अभी सूत्र बताएं। एदाओ चत्तारी सुप्त गाहाओ अधापवत्त करणस्य पढ़म समय परु विदौवाओ। पहले समय की बात उन्होंने पहले ही कही थी। ये चार सूत्र गाथाएं अध प्रवृत्त करण के प्रथम समय में कहनी चाहिए। ऐसा कहने का यह अभिप्राय है, ये सूत्र गाथाएं अध प्रवृत्त करण के प्रथम समय से पूर्व की और बाद की अवस्थाओं में प्रतिबद्ध अर्थ की प्ररूपणा करने में निबद्ध हैं। यानी अध प्रवृत्त करण के प्रथम समय में क्या पोजीशन है, उसके पहले क्या होगी और बाद में क्या क्या अवस्थाएं होने वाली हैं। इसलिए दोनों अवस्थाओं के लिए साधारण ऐसी मध्य की अवस्था में मध्य दीपक रूप से इनका कथन करना चाहिए। इस बात का ज्ञान कराने के लिए ये गाथाएं अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में कथन योग्य है ऐसा कहा है। उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है, इस न्याय का अवलंबन लेकर सर्वप्रथम प्रथम गाथा सूत्र के अर्थ का विशेष व्याख्यान करने की इच्छा से इसे कहते हैं। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। दंशन मोह वसामगस्त परिणामों केरिसो भवे की विहासा। दर्शन मोह के उपशामक का परिणाम कैसा होता है इसकी विभाषा, यानी वो भी इसका एक एक अवयव लेके गाथा सूत्र का एक एक वाक्य लेके इसका अर्थ करें। सर्वप्रथम प्रथम गाथा के इस पूर्वार्ध के अर्थ का विशेष व्याख्यान इस समय अधिकृत करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। समझा वह जैसे यथा प्रतिज्ञात अर्थ को विषय करने वाला यह प्रश्न का उपन्यास सुगम है। यानी वो तो सुगम है इसका यथा प्रतिज्ञात अर्थ विषय, क्योंकि उन्होंने पहले बताया कैसा होता है इसकी विभाषा करेंगे तो उसका अर्थ है परिणामों विशुद्धो, परिणाम विशुद्ध होता है। दर्शन मोह के उपशामक का परिणाम विशुद्ध ही होता है, अविशुद्ध नहीं होता, इस प्रकार सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। इसका परिणाम विशुद्ध तर होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अध प्रवृत्त करण के प्रथम समय को अधिकृत कर यह कहा है, केवल अध प्रवृत्त करण के प्रारंभ के समय में ही इसका परिणाम विशुद्धि रूप कोटि को स्पर्श नहीं करता, किंतु इसके पूर्व ही अंतर्मूल से लेकर विशुद्ध होता हुआ वह आया है। इस बात को बतलाने के लिए सूत्रकार ने इस सूत्र की रचना की है, आगे के सूत्र की रचना की है कि पूर्वम की अंतो मुहूर्त पहुरी अनंत गुणाए विशोही विशुद्ध मानो आगदो। अध प्रवृत्त करण के पूर्व ही अंतर्मूल से लेकर अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ आया। शंका, ऐसा किस कारण से है? उसका समाधान, क्योंकि जो अति दुष्कर मिथ्यात रूपी गर्त से उद्धार पाने के मन वाला है, क्या है गर्त है ना, गड्ढा, गड्ढा अति दुष्कर है, गर्त है ना, गड्ढा
खाड़ो,
अति दुष्कर मिथ्यात रूपी गर्त से उद्धार पाने के मन वाला है। हम देखते हैं ना आजकल, वो क्या है, कोई गिर जाता है बालक अंदर गड्ढा हुआ है, जो कुछ है अति दुष्कर बाहर निकालना
दुष्कर,
और वहाँ तो कोई दूसरा उसे मदद कर सकता है, हम अपनी लौकिक भाषा में, यहाँ तो इसको स्वयं ही बाहर निकालना, कोई इसको निकालने वाला है नहीं। तो अति दुष्कर मिथ्यात रूपी गर्त से उद्धार पाने के मन वाला है, वो स्वयं ही उसने प्रयत्नशील है। जो अलब्ध पूर्व सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा वाला, अलब्ध पूर्व पहले जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा देखिए उत्तम सम्यक दृष्टि लिया है ना, जो प्रति समय, ये बात है ना आपका प्रश्न है ना, प्रथम समय के द्वितीय समय तो मिथ्या तुर्की गर्त से बाहर निकालने निकलने वाला है ये जो जो प्रति समय सौक्षम लब्धि और देशना लब्धि आदि के बल से वृद्धिंगत सामर्थ्य वाला है, और जिसके संवेग और निर्वेद के द्वारा उत्तरोत्तर हर्ष में वृद्धि हो रही है, संवेग और निर्वेद का अर्थ है इसको धर्मानुराग रूप वृद्धि बढ़ना, और संसार और भोग शरीर आदि के प्रति उदासीन होते हैं, उत्तरोत्तर हर्ष में वृद्धि हो रही है, हर्ष की बात है, उसके प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि की प्राप्ति होने का निषेध नहीं है। विशेषता, संसारी जीव के मिथ्यात्व की भूमिका में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के सम्मुख होने की पूर्व तैयारी किस प्रकार की होती है, यह यहाँ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। संसार और संसार के कारणों के प्रति जिसके चित्त में उदासीनता आई है, वही जीव समय दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी। संसार और संसार के कारण, ये संसार के कारण क्या है, अपने ही राग रूप परिणाम मिथ्या तो है ही है, परंतु उसमें उदासीनता है, और वही जीव समय दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए यहाँ सर्वप्रथम यह बतलाया गया है, जो अति दुस्तर मिथ्यात् रूपी गर्त में से निकलना चाहता है, किंतु इतना विचार करने मात्र से कि संसार और संसार के कारण हितकर नहीं, इस जीव को संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए उसके चित्त में निरंतर मोक्ष और मोक्ष के कारणों के प्रति उत्तरोत्तर भीतर से आदर भाव होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि यह जीव मिथ्यात्व सेवन के कारण रूप बाह्य साधन कुदेव कुगुरों और कुशास्त्रों की सेवा अध्ययन आदि छोड़कर परमार्थ स्वरूप देव गुरु और परमागम की सेवा स्वाध्याय आदि में सावधान बने। जब भीतर से यह जीव हर्षातिरेक से आपूरित होकर परमार्थ स्वरूप देव और गुरु की उपासना तथा परमागम के श्रवण मनन में निरंतर सावधान रहता है। तब उसके उत्तरोत्तर परिणामों में विशुद्धि होकर क्रिया परिणाम द्वारा जो बाह्य लाभ होता है, उत्तरोत्तर परिणामों में विशुद्ध होकर भीतर क्रिया परिणाम द्वारा जो बाह्य लाभ होता है, उस लाभ को ही परमागम में चार लब्धियों की प्राप्ति कहा है। उत्तरोत्तर परिणामों में विशुद्धि होकर जो बाह्य में जो लाभ होता है, लब्धि है ना लाभ, उसको ही क्या कहा, चौथम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि। उनका स्वरूप इस प्रकार है, परिणामों की विशुद्धि वश पूर्व में संचित हुए कर्मों के अनुभाग स्पर्धकों के प्रति समय अनंत गुणे हीन होकर उदीरित होने का नाम चौक्षम लब्धि। प्रति समय अनंत गुणे हीन होकर उदीरणा को प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकों के निमित्त से ऐसे परिणामों का होना जो सात आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के निमित्त है और असात आदि अशुभ कर्मों के बंध के विरुद्ध है, विशुद्ध लब्धि। छह द्रव्य और नौ पदार्थों के उपदेश का नाम देशना है। उस देशना से परिणत आचार्य आदि की उपलब्धि, देशना से परिणत उपदेश देने वाले आचार्य की उपलब्धि, आचार्य आदि मतलब, तथा उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, जो उपदेश मिला है उसका ग्रहण यानी समझना, धारण, पहले तो उसने श्रवण भी ले लिया, श्रवण ग्रहण धारण विचार करने रूप शक्ति की प्राप्ति का नाम देशना लब्धि है। तथा सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर, उत्कृष्ट अनुभाग घात का तो हम प्रशस्त में कहेंगे ना, ये भी यहाँ समझ लेंगे, परंतु स्थिति तो सब कर्मों की कम हो जाएगी। उन्हें क्रम से अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति के भीतर और द्विस्थानीय अनुभाग में स्थापित करना प्रायोगिक लब्धि है। यहाँ तो मोहिनी की बात चल रही है, इसलिए मुख्यतः इसी उसकी बात अभी नहीं की उन्होंने। हाँ रुकना, जिसको विकसित की वहाँ पर नहीं करते हैं उसको तो वहाँ उसको रुकना है। कुछ बंद रुकना सत्तों की भी बात वो तो सब आएगी, अभी सप्तम से आएगी, उसी के चलते। तथा सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर उन्हें क्रम से अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति के भीतर, स्थिति की बात, और द्विस्थानीय अनुभाग में स्थापित करना प्रायोगिक लब्धि है। अब प्रशस्त को तो द्विस्थानीय में नहीं स्थापित करेंगे, ये तो अप्रशस्त की बात है, या यहाँ मोहिनी की बात करते होगे। जो भी उक्त चार लब्धियों के सद्भाव में अंतस्तत्व के मनन पूर्वक उत्तरोत्तर परिणामों की विशुद्धि द्वारा सम्यक ग्रहण के सम्मुख हो, वह अधकरण परिणामों को प्राप्त होता है। उसके इन चार लब्धियों का सद्भाव नियम से होता है, यह समग्र कथन का तात्पर्य है।
तो ये प्रायोगिक के लिए एक देश का नियम बताया,
हाँ तत्व का अनुभव घटेगा कि नहीं घटेगा? अभी वो उदय रूप है कि क्या है वो तो डिटेल में बातें आएगी, यहाँ तो सामान्य से कथन है।
तो प्रायोजनक की तो अभव्य को भी हो सकती है, तो वहाँ पे उसका भी क्या अनुभव जितना कम हो जाएगा देश का?
बिल्कुल होता है, सभी चीज़ें होती है। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध का आश्रय कर, ये तो उन्होंने अभी तो सामान्य से कहा है, अभी एक एक का विस्तार आएगा। परिणाम की विशुद्धि का कथन कर, अब गाथा के उत्तरार्ध के अवलंबन द्वारा योग आदि विशेषों का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। योगेत की विभाषा, योग इस पद की विभाषा, पद यानी शब्द, इस समय योग इस पद का विशेष व्याख्यान करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य। अन्नदर मन योगो वा अन्नदर वचि योगो वा ओरालीय काय योगो वा वेलुवीय काय योगो वा, किसको किसको नहीं लिया? मिश्र को नहीं, आरक को लेने का सवाल ही नहीं है, वो तो ये तो मिथ्या दृष्टि भी है, और कारमान का भी सवाल नहीं है, यानी उस अवस्था में मिश्र अवस्था में और कारमान का इसमें तो किसी को ऑप्शन ही सम्मिलित हो जाए ये बात नहीं बनती। अन्यतर मनोयोग, अन्यतर वचन योग, औदारिक का योग या वैकृत का योग होता है। दो पुष्प आए, जीव प्रदेशों की कर्मों के ग्रहण में कारणभूत परिस्पंद रूप पर्याय का नाम योग है। योग से क्या होता है? कर्मों का ग्रहण होता है। वह योग तीन प्रकार का है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। उनमें से सत्य मनोयोग, मृषा मनोयोग, सत्य मृषा मनोयोग और असत्य मृषा मनोयोग के भेद से असत्य मृषा यानी अनुभव मनोयोग चार प्रकार का है। इस प्रकार वचन योग भी चार प्रकार का कहना चाहिए, काय योग भी सात प्रकार का है। इस प्रकार ये अपना विषय बहुत मालूम है इसलिए हम केवल पढ़ रहे हैं, याद है ना ये सात प्रकार की काय। इस प्रकार योग के इन भेदों में से दर्शनों के उपशामक के कौन सा योग होता है ऐसा कहने पर उसका यह समाधान है कि मनोयोग के भेदों में से तो अन्यतर मनोयोग होता है, क्योंकि उन चारों के यहाँ प्राप्त होने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इसी प्रकार वचन योगों के भेदों में भी कथन करना चाहिए, परंतु काय योग औदारिक काय योग या वैकृत काय योग होता है, क्योंकि अन्य काय योगों का प्राप्त होना असंभव है। अन्य में औदारिक मिश्र है, वैकृत मिश्र है, आहारक के दोनों में आहारक और आहारक मिश्र और कारमा, ये पांच नहीं होगी। इन 10 पर्याप्त योगों में से अन्यतर योग से परिणत हुआ जीव प्रथम सम्यक के प्राप्त करने के योग्य होता है, शेष योगों से परिणत हुआ जीव नहीं, इस प्रकार यहाँ पर सूत्रार्थ का निर्णय है। विशेषा, जो जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है वह संगी पंचेंद्रिय होने के साथ पर्याप्त भी होना चाहिए। यह इस कथन से स्पष्ट ज्ञात होता है, यानी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए वो मिश्र का योग को नहीं लिया, क्योंकि उक्त 10 प्रकार के योग पर्याप्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। अब प्रश्न पूछा था ना, कौन से कषाय? कषाय के विभाषा, कषाय इस पद की विभाषा, यह सूत्र सुगम है। अन्न दरो कषाय, अन्यतर कषाय होती है। दर्शनों का उपशम करने वाले जीव के क्रोधादि चार कषाय में से अन्यतर कषाय परिणाम होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है, क्योंकि उनमें से एक का भी प्रकृत विषय में विरोध नहीं पाया जाता। उनमें से यह क्या वर्धमान कषाय परिणाम वाला होता है या हीयमान कषाय परिणाम वाला होता है। इस प्रकार इस आशंका का निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, किंतु वर्धमानो हीयमानो चाहिए ना, हायमानो विषय का हाय वर्धमानो हायमानो नियमा हायमानो कषाये हीयमानो हीयमान शब्द आया था ना अक्सर, अभी हमने देखा था वहाँ देखिए पेज नंबर 203 की बात, हायमानो ही लिखा है, 300 वर्धमानो हायमानो थी। क्या वह वर्धमान कषाय वाला होता है या हीयमान कषाय वाला होता है, नियम से हीयमान कषाय वाला होता है, क्योंकि विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होने वाले इसके वर्धमान कषाय के साथ रहने का विरोध है। उसकी विशुद्धि बढ़ रही है तो कषाय बढ़ नहीं सकता उसका, इसलिए क्रोधादि कषायों के द्विस्थानीय अनुभाव के उदय से उत्पन्न हुए तत्प्रायोग्य मंदत कषाय परिणाम का अनुभव करता हुआ सम्यक्त को उत्पन्न करने के लिए आरंभ करता है। इस प्रकार इस सूत्र का समुदाय रूप अर्थ सिद्ध हुआ। विशेषण, पहले क्षोभ समाधि चार लब्धियों के स्वरूप निर्देश के प्रसंग से प्रायोग्य लब्धि का स्वरूप निर्देश कराए हैं। उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव सम्यक्त ग्रहण के सम्मुख होता है उसके अन्य कर्मों के समान मोहनीय कर्म का अनुभव विशुद्धिवश द्विस्थानीय हो जाता है। उसमें भी प्रति समय उसमें अनंत गुणी हानि होती जाती है, इसलिए इस जीव के हीयमान कषाय परिणाम का ही उदय रहता है, यह सिद्ध होता है। लता दारू, दारू वाला डायरेक्ट दारू वाला ही समझा, मिथ्या तो का दारू वाले को ही द्विस्थानी कहते हैं, है तो मिथ्या तो सर्वघाती, परंतु वह अत्यंत मंद रूप उदय की बात चल रही है। सत्ता में भले सभी पड़े, उदय उसका मंद 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 चल रहा है, तो जैसे मिथ्या का मंद हुआ है वैसे कषाय भी अत्यंत मंद हो गए। और प्रति समय मंद मंद होते जा रहे, अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है ना प्रति समय।
मिथ्या तो ऐसे ही दारू अस्थि और शैल रूप ही होते हैं।
मिथ्या तो मैं दारू अस्थि शैल की नहीं, वो योगेत्ति विभाषा उपयोग इस पद की विभाषा। शंका, उपयोग किसका नाम है? उसका समाधान, जिसके द्वारा उपयुक्त होता है उसका नाम उपयोग है। आत्मा के अर्थ के ग्रहण रूप परिणाम का नाम उपयोग है। यह उक्त कथन का अर्थ है। वह उपयोग साकार अनाकार के भेद से दो प्रकार का है। उनमें से साकार ज्ञानों को पर ज्ञान, ये साकार उपयोग ही ज्ञानोपयोग है। साकार ज्ञानोपयोग है स आकार विशेषताओं को जानने वाला, और अनाकार दर्शनोपयोग है तथा उनके क्रम से भेद मति ज्ञान आदि और चक्षु दर्शन आदि है। क्रम से भेद है साकार ज्ञानोपयोग के भेद कौन से है? मति ज्ञान और अनाकार दर्शनोपयोग के भेद कौन से है? चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन आदि। उनमें से यह दर्शन मुंह का उपशामक जीव किस उपयोग से परिणत होता हुआ प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करता है, ऐसा प्रश्न होने पर यहाँ उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यानी सम्यक्त उत्पत्ति के समय उसका कौन सा उपयोग चल रहा है। जैसे नियम से साकार उपयोग होता है, ये नियम बताए, शंका, यह नियम किस कारण से है? उसका समाधान, क्योंकि अविमर्शक एक विमर्शक और एक अविमर्शक और सामान्य मात्र ग्राही चेतनाकार उपयोग के द्वारा विमर्शक स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति के प्रति अभिमुख पना नहीं बन सकता। इसलिए मतिशुत अज्ञान रूप से या विभंग ज्ञान रूप से परिणत होकर यह जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने के प्रति उस उपयोग द्वारा प्रवृत्त होता है, यह सिद्ध हुआ। विभंग ज्ञान से भी ले लिया क्या कहा, फिर से पूछा था उपयोग कौन सा होता है, साकार उपयोग है क्या नाकार उपयोग है, सॉरी निराकार है, तो कहते हैं कि साकार उपयोग ही है। उसके समाधान में क्या क्या बताया, अविमर्शक, विमर्शक है ना, परामर्श करना विमर्श करना, इन्हें उसके बहुत इन्हें कंक्लूजन तक आ जाए, निर्णय करना। कहते अविमर्शक और सामान्य मात्र ग्राही चेतनाकार उपयोग यानी दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग कैसा है, अविमर्शक यानी निर्णय करने का कार्य दर्शन का नहीं है, और कैसा है सामान्य मात्र है, ऐसा जो चेतनाकार उपयोग है यानी ये दर्शन उपयोग है। उसके द्वारा विमर्शक स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अभिमुख पना नहीं बने। ये अभिमुख की बात है, अभी समय को प्राप्ति तो अभी थोड़ी ऊपर है। इसलिए मतिशुत अज्ञान रूप से या विभंग ज्ञान रूप से परिणत होकर यह जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने के प्रति उस उपयोग द्वारा प्रवृत्त होता है, यह सिद्ध हुआ। अभी वो तो प्रवृत्त हुआ है उसके प्रति, अभी सम्यक को ग्रहण का समय नहीं आया, तो यहाँ भी ये सारा कार्य किसमें होगा, तो ज्ञान उपयोग में होगा, विशेषार्थ उसी का बदला है। सर्वप्रथम यहाँ दर्शन के स्वरूप का निर्देश करके यह बतलाया गया है कि समय दर्शन की प्राप्ति के प्रति सन्मुखपना ज्ञानोपयोग काल में ही संभव है। सन्मुखपना भी और ही लगा दर्शनोपयोग काल में नहीं, क्योंकि जब यह जीव जीवादि नौ पदार्थों के स्वरूप का निर्णय करने के साथ अपने साकार उपयोग परिणाम के द्वारा ज्ञायक स्वरूप त्रिकाली आत्मा के सम्मुख होता है, तभी उसके समय दर्शन की प्राप्ति की सम्मुखता कही जाती है। ऐसे जीव के उस समय मति श्रुताज्ञान, श्रुताज्ञान है श्रुता अज्ञान, रूप की बात है ना, कुमति की श्रुता, अभी मिथ्या विषय न हो, होने पर भी यानी है तो उसका मतिशुत अज्ञान, फिर भी वह कारण विपर्यास भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास रूप न होकर वो है तो अज्ञान, परंतु कैसा है, ये तीन विपरीतताएं उसमें नहीं है, आगम गुरु उपदेश और तत्व को स्पर्श करने वाली युक्ति के बल। तत्व को स्पर्श करने वाली युक्ति यानी उसके जो कुछ अनुमान ज्ञान में बात चल रही है, निर्णय चल रहा है, किसी कुछ ज्ञान में जो कुछ वहाँ पहुँच चल रहा है, उसके बल से यथावस्थित जैसे है वैसे जीव के स्वरूप को अनुगमन करने वाला ही होता है। भले अभी उसको हम सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते हैं, फिर भी उसके आगम गुरु उपदेश और तत्व का निर्णय करने के प्रति वो अभी उसका बल लग रहा है। ऐसे जीव के चार लब्धियों में देशना लब्धि के स्वीकार करने का प्रयोजन भी यही है, उसी को देशना लब्धि कहते हैं। यहाँ टीकाकार ने मतिशुत साकार उपयोग के साथ विभंग ज्ञान का भी उल्लेख किया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है के टीकाकार मतिशुत साकार उपयोग के समान विभंग ज्ञान के द्वारा भी समय दर्शन के सन्मुख होने की पात्रता मानते हैं, किंतु धवला में इसी प्रसंग से मधिशुद सागार वजुक्तो पद द्वारा उसे मतिशुद साकार उपयोग वाला ही बतलाया है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अविनाभावी है और नए विकल्प शुद्ध ज्ञान में ही संभव है। इसलिए ऐसे जीव को मति शुद्ध साकार उपयोग वाला कहना तो युक्ति युक्त है, परंतु विभंग उपयोग वाला क्यों कहा यह विचारणीय है। मालूम पड़ता है कि जो नारकी आदि जीव विभंग ज्ञान से पूर्व भव आदि को जानकर पश्चात मतिशुत साकार उपयोग के बल से आत्मा के सम्मुख होता है, उसकी अपेक्षा टीकाकार ने यह कथन किया है। विभंग ज्ञान द्वारा कोई चीज उसने जान ली और उसके परिणाम ऐसे पलट गए कि आत्मसम्मुख या उस तत्व विचार में जुड़ गए। ये सम्मुखता की बात चल रही है, ऊपर लिखा देखो देखो समाधान है, ऊपर से समाधान है तीसरी लाइन, समाधान की तीसरी लाइन 22 नंबर का पॉइंट मिला। इसलिए मतिशुत अज्ञान रूप से या विभंग ज्ञान रूप से परिणत होते हैं। हाँ, और सम्यक्त को उत्पन्न करने के प्रतीक का उपयोग हुआ। सम्यक्त उत्पन्न करने के प्रति क्यों झुका है वो,
विभंग ज्ञान
से कुछ जाना है और उसके वो अभी वो तत्व निर्णय में आत्मसम्मुख होने में झुक गया। इस तरह से बोलना लेशा से विहास लेशा, हाँ नहीं उसका उपयोग कौन सा चल रही वो बात है, और अभी सम्यक तो नहीं लिया है, सम्यक तो की पूर्व अवस्था है
अभी
तो उस समय उसका कौन सा उपयोग है। तो इन्होंने कहा ना उसको, इन्होंने विशेषार्थ में अच्छा खोला है कि नारकी आदि जीवों ने विभंग ज्ञान से पूर्व की कोई ज्ञान जान ली और फिर वो मतिशुद्ध ज्ञान द्वारा इसमें जुड़ गए। मतिशुद ज्ञान में ही उसके मतिशुद ज्ञान में तो सम्यक की प्राप्ति होगी। आत्मा को जानने की बात नहीं हो रही, पूर्व सम्मुख होने का परिणाम उसमें वो क्यों लगा जी, उसमें क्यों जुड़ गया
कारण।
तो ये उन्होंने बात बताई कि मतिशुद ज्ञान तो होता ही है, परंतु यहाँ विभंग ज्ञान लेने का नारकी की अपेक्षा देव की अपेक्षा कुछ नहीं होगी। सारे विशेषाज बहुत अच्छे चले हैं। अब लेशा एक पद की विभाषा, यह सूत्र सुगम है। तेउ पम्म सुक्क लेशानम नियमा वड्ढमान लेशा, पीत पन्म और शुक्ल लेशाओं में से नियम से कोई एक वर्धमान लेशा होती है। वर्धमान लेशा क्यों कहा, क्योंकि ये शुभ लेशाएं हैं और उनकी विशुद्धि बढ़ती है, इसलिए वर्धमान कहा। वो नारकी में ये बात नहीं लगेगी क्योंकि उनकी तो अपनी लेशा तो पलटे ही नहीं। पीत पद्म और शुक्ल लेशाओं में से नियम से कोई एक वर्धमान लेशा उसके होती है, इनमें से कोई भी लेशा नियमान नहीं होती, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस वचन द्वारा इस जीव के कृष्ण नील और कपोत लेशा का तथा हियमान पीतपन्न शुक्ल लेशा का प्रतिषेध किया गया जान लेना चाहिए। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि यह जो वर्धमान शुभ तीन लेशाओं का नियम यहाँ पर किया गया है वह नहीं बनता, क्योंकि नारकियों के सम्यक की उत्पत्ति करने में व्यापृत होने पर अशुभ तीन लेशाएं भी संभव पाई जाती है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि तिर्यंच और मनुष्यों की अपेक्षा यह सूत्र प्रवृत्त हुआ और तिर्यंच तथा मनुष्यों के सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय शुभ तीन लेशाओं को छोड़कर अन्य लेशाएं संभव नहीं है। क्योंकि अत्यंत मंद विशुद्धि द्वारा सम्यक को प्राप्त करने वाले जीव के वहाँ पर जघन्य की क्लेशा का नियम देखा जाता है। क्या कहा? सम्यक को प्राप्त करने वालों में जो तर्कंत अलग अलग परिणामों के द्वारा सम्यक को प्राप्त हो सकता है, उसमें मिनिमम परिणाम वाला जीव, विशुद्धि वाला जीव कौन सा है? इसका जघन्य। शंकर, परंतु यहाँ पर देव और नारकियों की विवक्षा क्यों नहीं की है? देवों में तो शुभ होती ही होती है। समर, नहीं, क्योंकि उनके अवस्थित लेशा भाव का कथन करने के लिए, यानी उनकी अपनी अपनी लेशा वही कायम रहती है, यहाँ पर परिवर्तमान यानी जो लौट कर फिर वापस अपने पर आ रहे थे, क्योंकि चेंज होते रहे, परिवर्तमान सब लेशा वाले तीरेंच और मनुष्यों की ही प्रधान रूप से विवक्षा की गई है। मनुष्य तीरेंचों में 6 लेशाएं पाई जाती है, तो उनमें किस चीज की कौन सी लेशा होगी? समय तो प्राप्ति के सम्मुख की बात है। समय तो होने के बाद हम जब कहते वेद समय दृष्टि, साइज समय दृष्टि, उसमें तो 6 पॉसिबल है। विशेषार्थ, शून्य सूत्र में उत्तम सम्यक्त्व के सम्मुख हुए जीव के वर्धमान मात्र पीत कर्म शुक्ल 3 शुभ लेशाएं ही क्यों स्वीकार की गई है, जबकि नारकियों के इस अवस्था में एक भी शुभ लेशा नहीं होती? यह एक प्रश्न है। समाधान यह है कि नारकियों और देवों में जिसके जो लेशा होती है वह अवस्थित रूप से होती है, इसलिए उल्लेख न करने पर भी उसका ज्ञान हो जाता है। यहाँ प्रश्न तो यह है कि तीरेंच और मनुष्य गति में एक ही जीव के परिवर्तन क्रम से 6 लेशाएं संभव है क्या? अतः यहाँ यह बतलाया है तीरेंच और मनुष्यों में उपशम सम्मेलन के सम्मुख होने पर 3 शुभ लेशाओं में से कोई एक लेशा होती है, यानी उस काल में उसका लेशा का पलटना नहीं होता, एक लेशा पर होता। वेदों ये को भवेत की विभाषा, वेद कौन होता है इस पद की विभाषा, वेदों ये को भवे, यह जो गाथा सूत्र का अंतिम पद है उसके अर्थ का इस समय विशेष व्याख्यान करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अन्न दरो वेदो, कोई एक वेद होता है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति में व्यापृत हुए जीव के 3 वेदों में से कोई एक वेद परिणाम होता है, क्योंकि द्रव्य और भाव की अपेक्षा 3 वेदों में से अन्यतर वेद पर्याय से युक्त जीव के सम्यक्त्व की उत्पत्ति में व्यापृत होने में विरोध का अभाव है। मैंने किसी भी वेद वाले को सम्यक्त्व होने में कोई यहाँ विरोध नहीं है। शंका, दर्शन मोह के उपशामक के परिणाम कैसा होता है? इतना मात्र सूत्र पर्याप्त है, क्योंकि योग कषाय उपयोग लेशार वेद ये जितने भी परिणाम भेद है इनका उसी में अंतर्भाव हो जाता है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त सूत्र में संकलेश और विशुद्धि रूप परिणाम भेद ही परिणाम पद के ग्रहण करने से विवक्षित किए गए। परिणाम शब्द के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, किसी भी गुण के पर्याय को भी परिणाम कहेंगे। चारित्र मोह के परिणाम को, यानी चारित्र गुण के जो परिणाम है उसको परिणाम कहेंगे, और यहाँ तो मात्र संकलेश विशुद्धि को ही परिणाम था, और बाकी योग वगैरह भी परिणाम ही है, परंतु उसको अलग से बताया। यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए गति इंद्रिय आदि विषय विशेष व्याख्यान यहाँ पर करना चाहिए, यानी सभी मार्गणों की बात यहाँ पर बताना चाहिए। इस प्रकार प्रथम गाथा द्वारा, यानी कौन से गति वाले को होता है इशारों गति वाले, कौन से इंद्रिय वाले को होता है तो संगी पंचेंद्रिय वाले को, इंद्रिय में तो पंचेंद्रिय कहेंगे। इस प्रथम गाथा द्वारा दर्शन मोह के उपशामक के विशुद्धि लक्षण परिणाम में विशुद्धि लक्षण लेना तथा योग कषाय उपयोग आदि भेदों का व्याख्यान किया, तथा इसी गाथा सूत्र द्वारा इस जीव के करण लब्धि सव्यपेक्ष सोक्षम विशुद्धि देशनार प्रायोगिक संज्ञक 4 लब्धियां सूचित की गई। क्योंकि उनके बिना दर्शन मोह के उपशम करने रूप क्रिया में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रायोगिक जिसका नाम है ऐसी चार लब्धियां। सव्यपेक्षा ने उसकी अपेक्षा रखने वाला ऐसा होना चाहिए। उसका विशेषण देखते हैं, क्योंकि जहाँ करण लब्धि है तो उसके पूर्व में ये होती ही है विशेषण। वेद निरूपण के प्रसंग से यहाँ पर टीकाकार ने द्रव्य और भाव रूप दोनों प्रकार के वेदों का निर्देश किया। यह ठीक है कि जो द्रव्य से स्त्री पुरुष और नपुंसक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम समत्व के ग्रहण के योग्य है, और जो भाव से स्त्री पुरुष और नपुंसक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम समत्व के ग्रहण के योग्य है। परंतु मूल गाथा सूत्र में और उसका विशेष व्याख्यान करने वाले चूर्णी सूत्र में मात्र भाव वेद की अपेक्षा ही कथन किया गया है, इतना यहाँ पर विशेष समझना चाहिए। यहाँ एक यह प्रश्न भी उठाया गया है कि गाथा सूत्र के परिणामों के विषय हुए इस वचन में जो परिणाम पद आया है उसी से योग कषाय उपयोग लेशार वेद का ग्रहण हो जाता है। ऐसी अवस्था में इन सब भेदों का अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो शंका पूछ ली। इसका समाधान यह कर किया गया है। उक्त वचन में परिणाम पद केवल संकलेश और विशुद्धि को सूचित करने के लिए आया, इसलिए उक्त भेदों का अलग से निर्देश किया गया है। इसके बाद टीका में यह बताया गया है, यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए जो अनुक्त मार्गणाएं यहाँ संभव हो, संभव की बात है, उन्हें भी जान लेना चाहिए। यथा गति मार्गणे की अपेक्षा तीर्यंश नार के मनुष्य और देव चारों गतियों में प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति संभव है। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय, काय मार्गणा की अपेक्षा त्रिसकायी, संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयमी, भव्य मार्गणा की अपेक्षा भव्य, सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि, संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी और आहार मारणा की अपेक्षा आहारक जीव ही प्रथम सम्मिलित के ग्रहण के योग्य है, अन्य नहीं। ये उन्होंने सभी मार्गणाएं जगाकर बताई। अंत में यह सूचित किया गया है, जो करण लब्धि द्वारा प्रथम सम्मिलित के सम्मुख होता है उसके सूक्ष्म आदि चार लब्धियों का सद्भाव नियम से होता है। इसका आशय यह है, जिसने परमार्थ स्वरूप देव गुरु और आगम के प्रति श्रद्धावंत होकर गुरुमुख से तत्वार्थ का उपदेश ग्रहण किया है, जो सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धावान होने उसके स्वरूप का निर्णय करके उनके प्रति अहोभाव और गुरुमुख से तत्व का उपदेश ग्रहण किया है, और जो तत्प्रायोग्य विशुद्धि संपन्न हो सूक्ष्म आदि लब्धियों से वर्तमान में युक्त है वही आत्मसन्मुख हो अधकरण आदि परिणाम प्राप्त करने का अधिकारी है, अन्य नहीं। प्राणी व पूर्वबद्धानिक की विभाषा, पूर्व में बंधे हुए कर्म कौन कौन है इस पद की विभाषा। काणी व पूर्वबद्धानि है जो दूसरी गाथा का प्रथम बीज पद है, उसके अर्थ का विशेष व्याख्यान इस समय अवसर प्राप्त है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। एक पयड़ी संतकम्मम सिद्धि संतकम्मम अनुभाग संतकम्मम पदेश संतकम्मम च मग्गी अव्वम यहाँ पर प्रकृति सत्कर्म, स्थिति सत्कर्म, अनुभाव सत्कर्म और प्रदेश सत्कर्म का मार्गण करना चाहिए। इस पद में सभी कर्म विषय प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश सत्कर्मों का मार्गण करना चाहिए यह कथन किया गया है। सभी कर्म विषय के ने ज्ञानावरणा की सभी में क्या क्या पोजीशन होगी। अब इस पद को निमित्त कर इन चारों प्रकार के सत्कर्मों का मार्गण करेंगे यथा उनमें से सर्वप्रथम प्रकृति सत्कर्म का मार्गण करते हैं। आठों ही मूल प्रकृतियां सत्कर्म रूप से यहाँ पर संभव है, संभव ने पाई जाती है। उत्तर प्रकृतियों में भी ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियां, दर्शनावरण की नौ प्रकृतियां, वेदनीय की दो प्रकृतियां, मोहनीय की मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय, ये 26 प्रकृतियां सत्कर्म रूप से होती हैं। क्या नहीं है सत्कर्म क्यों लिया? क्योंकि यहाँ ना सम्यक है ना सम्यक मिथ्यात्व है, क्योंकि दर्शनों ये दर्शन होने की उपशम ना करने वाला है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि के तथा 26 प्रकृतियां सत्कर्म वाले सादी मिथ्या दृष्टि के इनका सद्भाव पाया जाता है। अब ये दूसरी जो ऑप्शन है वो बताएंगे, अथवा सादी मिथ्या दृष्टि के सम्यक प्रकृति के बिना, सम्यक प्रकृति के बिना मोहिनी की 27 प्रकृतियां सत्कर्म से होती हैं, क्योंकि सम्यक की उद्वेलना कर उच्चम सम्यक के अभिमुख हुए जीव के उनके विरोध होने में कोई विरोध नहीं है। अथवा सम्यक के साथ 28 प्रकृतियां सत्कर्म रूप से होती है, हमने देखा था ना सागर जितनी स्थिति कम हुई है तो उनके फिर होता है, क्योंकि वेदक सम्यक के योग्य काल को उल्लंघन कर जिसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना नहीं की है, न हो हुआ नहीं की है, यानी पूर्ण नहीं हुई है, नहीं किए का अर्थ क्या है,
पूर्ण नहीं,
समाप्त नहीं हो गई, यानी उद्वेलना पूर्ण नहीं हो सकी, ऐसे उत्तम सम्यक के अभिमुख हुए जीव के उक्त प्रकार से 28 प्रकृतियों का सद्भाव देखा जाता है। उक्त जीव के आयु कर्म की एक या दो प्रकृतियां सत्कर्म रूप से होती है, ये कैसे होगा प्रेरणा? आयु कोई एक ही होगा ना, दो कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा, एक प्रकृति कब कहेंगे जब अभी अवधायु है,
अवधायु
और जो बद्धायु है
बांध के पीछे सब्जेक्ट को प्राप्त करेगा
तो दो आयु होगी, तो दो आयु किसके होगी मनुष्य के, कौन कौन सी दो आयु होगी
मनुष्य के, तो कोई भी दो आयु हो सकती,
मनुष्य आयु होगी तो एक ही कहलाएगी,
नहीं दो आयु होगी
यानी पीरेंट भी हो सकती है, देवी उसके नारकी उसके लिए, मनुष्य के लिए, देव के लिए दो कौन सी होगी,
मनुष्य और पीरेंट,
अरे नहीं
देव के लिए,
देव और मनुष्य
और देव और पीरियड नहीं हो सकती है,
ये यानी ऑप्शन है, देव और मनुष्य
और देव पीरियड, नारकी के लिए भी वही दो ऑप्शन हो जाएंगे,
नारकी मनुष्य या नारकी पीरियड, वह कैसे क्षमता, यदि जिसने प्रभव संबंधी आयु का बंध किया है ऐसा जो उत्तम सम्यक को प्राप्त होता है तो दो प्रकृतियां होती है, या उसके हम भुजमान और बद्यमान ऐसा भी कहकर मनुष्य मनुष्य कोई बांधेगा तो भी हम कहेंगे, और जिसने प्रभव संबंधी आयु का बंधन नहीं किया है ऐसा वह जीव है तो भुजमान अन्यतर एक प्रकृति होती है, भुजमान में कोई भी हो सकती है क्योंकि चारों ही गति में सम्यक होता है, ये मुज्जमान हुआ, भुज्जमान करो, यही रुकेंगे हम, जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो सोवानी मस्त सनमो सदा देख मुनो अच्छा
नमो रियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उच्चानम नमो द्वय सत्वस्तावनम नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वर्जानम नमो लोहे सब्बसावनम नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वर्जानम नमो लोहे सब्बसावनम।